તારીખ 4/3/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 807 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 5
પત્રાંક 224-225 807 લેના હૈ 224-225 લેના 807 બતા રહે તાંડવ દેશ કાલ અને અધિકારી કે યોગ સે ઉપકાર કે હેતુ હૈ અર્થાત ઘણા જ્ઞાનીઓને જિસ પ્રકાર ઉપદેશ ક્યાં હૈ उस तरह प्रवृत्ति करने से आत्मार्थ ही है। क्या कहते हैं, ये बात मोक्ष के लिए है कि मोक्ष को अपने पात्रता के अनुसार बंध त्याग होना चाहिए, अपनी भूमिका और अपने परिणाम की जो शक्ति है उस शक्ति को देखते हुए समझते हुए और ज्ञानी की आज्ञा में रहते हुए, जो ज्ञानी आज्ञा करे उसी प्रकार अगर प्रवृत्ति करेंगे तो उसका आत्मकल्याण हो सकता है। स्वच्छंद से कुछ करेंगे तो उसमें आत्मकल्याण होगा नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाश में वर्तमान जिनार्दन जो श्वेतांबर संप्रदाय को माननी है उनका निषेध किया है, उन्हें निषेध करना योग्य नहीं है। तो उसमें क्या है कि मतमतांतर के दृष्टिकोण से उन्होंने ये बात लिखी है। प्रायः हम लोग दूसरे मत का निषेध करते हैं। श्रीमद जी का दृष्टिकोण सभी अन्य मतों के लिए एक प्रकार का ऐसा राम है कि जितने भी मत निकले वो ऋषभदेव स्वामी के जमाने से निकले। इसके पहले यहाँ युगलिया के क्षेत्र थे, कोई धर्म नहीं चल रहा था, धर्म क्षेत्र ही नहीं था। जब वहां भगवान की वाणी खिरी तो उसमें से उसी वाणी के कुछ अंश को लेकर के अन्य अन्य प्रकार के मत निकले। तो किसी को कोई बात अच्छी लगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी, किसी को कोई बात अच्छी लगी। उस बात को उन्होंने ग्रहण तो किया, साथ साथ अपने मति दोष के कारण से उनका आभास भी उनको रहा। तो मूल बात रहकर के साथ में आभास जमीन हो गया और उनके मानने वाले अनेक लोग साथ में हो गए, तो उनका अलग अलग संप्रदाय चलने लगा। अब क्या हुआ है कि हरेक मत में तीर्थंकर देव की कुछ न कुछ बात तो है ही। जैसे हमारे गुरुदेव हुए तो आज हम विद्वानों में एक मत है, गुरुदेव के सुने सुनाई बात में एक मत है, वो तो हम नहीं कह सकेंगे। कोई किस बात को खींचता है, कोई किस बात को खींचता है, कोई किस बात को खींचता है। नहीं, अपने यहाँ सिद्धांत में विद्वान एक मत नहीं है, विद्वान लोग एक मत नहीं है। हमारे जो गुरुदेव के विद्वान है वो सभी गुरुदेव की बातों में एक मत आज भी नहीं है।
वो
तो मोटी मोटी बात है, मोटी मोटी बात में तो शतांगर भी सात तत्व को मानते हैं, वो भी मोटी मोटी बात में तो वो लोग भी 24 तीर्थंकर को मानते हैं, तो इससे कोई एकमत थोड़ा हो जाता है। प्रयोजनभूत में भी हमारे मन मत मतांतर सभी ग्रुप में चलता है, कोई एक मत में खड़े नहीं है। यानी सब कुछ समझ चुके हैं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बात तो गुरुदेव के नाम से सब करेंगे कि गुरुदेव ऐसा कहते थे, गुरुदेव ऐसा कहते थे, गुरुदेव ऐसा कहते थे। तो आपको पता नहीं है, तो आपको पता नहीं है, सभी विद्वान एक मत में नहीं है। मेरे तो कहने का अभिप्राय वो है कि हो सकता है अपना अपना विचार या समझ हो सकती है उसके पीछे। तो क्या होता है कि कुछ बात तो गुरुदेव के लेकर के ही सब चलेंगे, कुछ न कुछ बात चाहे मतांतर हो लेकिन कुछ बात तो लेकर के ही चलेंगे। गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, ऐसे सब मत वालों ने जो भी बात लिया है वो तीर्थंकर देव के लिया है। उन्होंने एक पद लिखा है श्रीमद जी ने कि चार वेद पुराण आदि शास्त्र से मिथ्यात्मना है, तो मिथ्या दृष्टि के शास्त्र है, परंतु ज्ञानी ने तो ज्ञान भाषा एक ठिकाने थोड़ो जिनवर कहे छे ज्ञान कहने सरोज हो गए सामेश्वर देव। ज्ञान किसको कहते हैं कि आप अन्य मत के कोई भी शास्त्र पढ़ो इसमें जिनेन्द्र देव की बात कौन सी थी और उसमें जो भी आभास हुआ वो कौन सा हुआ, तो ये बात आप अलग अलग नहीं छांट सकते हैं। तो आप कोई बात जिनेन्द्र देव की भी समझते हैं वो बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि ये तो श्यादवाद है। श्यादवाद में तो सभी बातें हैं, किसी ने कोई बात को खींची है, किसी ने कोई बात को खींची है और मत चला गया अलग, तो उसमें भगवान की वाणी कहाँ आई, कैसे आई। जैसे यहाँ अन्य मत को शास्त्रों की बात गुरुओं ने कही है, योग वासिष्ठ आदि, तो उसमें जो वैराग उपशम की जो मूल बातें हैं वो तो तीर्थंकर देव की है। किसी भी जैसे बौद्ध मत है उसमें क्षणिकवाद है, लेकिन अनित्यता का विषय तो तीर्थंकर देव ने स्थापित किया हुआ है, फिर उस पर उन लोगों का आभास हुआ वो उनकी भूल है, लेकिन मूल बात जो है वो तो तीर्थंकर देव से ली हुई है और आगे उनका मतिदोष हो गया है। तो कुछ न कुछ मूल बात को लेकर के वो चले हैं, उसमें मूल बात कौन सी है वो हमारी नजर में आनी चाहिए। और सुनिए, जैसे सांख्य मत है, सांख्य मत कैसे निकला, सम्यक दर्शन का मूलभूत जो विषय है कुटस्थ अपरिणामी, यहां से सांख्य मत निकला। तो जो कुटस्थ अपरिणामी वाली बात है वो तीर्थंकर देव की है, फिर उन्होंने आगे जाकर के पर्याय को नहीं माना और उनकी भूल है, लेकिन वो बात जो उन्होंने पकड़ी है वो तो तीर्थंकर देव की पकड़ी है। तो ज्ञानी के ज्ञान में वो बात आती है कि देखो वो उसमें तो अलग अलग छांट सकते हैं कि ये मूल बात है, भक्ति का अंश है और भ्रंश है, इस तरह से है। ऐसे दिगंबर में से स्वतंबर निकले, स्वतंबर कहां से निकले, वो तो दिगंबर में से ही निकले। तो जब वो दिगंबर में से निकले तो कुछ बात उनकी परंपरा में रह गई, जैसे आज उनका शास्त्र है आचारण। देखो तो आचार्य का पहला अध्याय का पहला सूत्र क्या है कि जो एकम जानी सो सबमन जानी, तो ये मूल बात तीर्थंकर देव की है, उनका निषेध नहीं होना चाहिए, वरना तो तीर्थंकर देव की बात का निषेध हो जाएगा। जो एक आत्मा को जानता है वो सभी को जानता है, वो बात तीर्थंकर देव ने कही है, वो बात उन लोगों की धारणा में रही है, पर उन लोगों ने अपने शास्त्र में वो बात को रखी है। लेकिन जो दूसरी दूसरी बात आई वो दूसरी बात का निषेध होना चाहिए। लेकिन मूल बात का निषेध करेंगे तो तीर्थों के दिल की बात हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए इनका भी निषेध हो जाएगा। तो कहीं ऐसी भूल नहीं हो जाए, इसलिए ज्ञानी ने तो ज्ञान भाषा एक ठिकाने थोड़ो ज्ञान भाषा एम क्यों छो कि एवं तीर्थंकर, इसमें तीर्थंकर देव की बात कौन सी है वो ज्ञानी की नजर में आते हैं, सामान्य या विद्वानों की नजर में या अज्ञानियों की नजर में वो बात नहीं भी आ सकती है। और खास करके जो मत मतांतर में पढ़ते हैं और मताग्र में जो लोग होते हैं उनको तो वो बात समझ में कभी आएगी नहीं कि इसमें क्या रहस्य रहता है। और मुमुक्षु की भूमिका में ये मत मतांतर में जाना, ये आत्मार्थ के विरुद्ध जाना जाने के बराबर हो जाता है। जब श्री गुरुदेव के बताए तत्व में सब विद्वानों के मत अलग अलग है तो सत्संग में आने पर किस विद्वान की बात पर भरोसा करे तथा किसी मानने खुलासा करे, वो तो अपने की परीक्षा दृष्टि होनी चाहिए कि किसकी बात माननी किसकी बात नहीं माननी, वो परीक्षा दृष्टि अपनी खुद की होनी चाहिए और इसकी योग्यता भी किसकी अपनी खुद की होनी चाहिए। मैं कहूँ वो आप मान ले उसमें तो आपको फायदा होने वाला नहीं है, या कोई कहे और आप मान ले उसमें भी आपको फायदा होने वाला नहीं है, उसमें तो खुद को ही तैयार होना पड़ेगा। जब हम मान लेने जाते हैं, जोड़े बाजार में जाएंगे सैकड़ों दुकानें लगी हुई है, सभी कहेंगे कि हमारे यहाँ शुद्ध माल मिलता है, कोई अपने बोर्ड में ऐसा नहीं लगाएगा कि हम मिलावट वाले माल बेचते हैं, बोर्ड तो सब का यही रहेगा। फिर भी हम जिस किसी की दुकान पर चलेंगे उनके विषय में कुछ न कुछ विचार करके कुछ भरोसा लायक को बात का निर्णय करके जाएंगे कि इसका भरोसा करना योग्य है, इसकी दुकान पर हमको जाना है, उसको पैसे देना है, इसका माल लेना है। दुकान कितनी भी शोभा वाली हो या दुकान में जाने गिरगिर हो इसलिए जाएंगे वो भी बात नहीं है, इसके विश्वसनीयता पर हमको कुछ न कुछ बातें या कुछ न कुछ भरोसा लायक कुछ चीज मिलती है तो हम जाते हैं। इस तरह से हमें हर बात में हमारी तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए किसी के कहने से कोई काम नहीं बनता, ये बात है। तो उसका आशय उतना ही है कि जो बात मूल है उनको तो हम समझे और जो बात में फेरफार किया है उनको भी हम समझे कि यहां सिद्धांत पूर्णता है। और जाहिर में कोई भी मत हो या मत नहीं हो, जाहिर में जहां अपने अभिप्राय में सिद्धांत टूटता है अन्य मत हो जाता है, वही मिथ्या तो हो जाता है। ये बात चली थी अपने स्वाध्याय के दौरान कि मूल प्रयोजन भूत विषय अपना आत्म स्वरूप है, परम प्रयोजन भूत, और उस आत्म तत्व तक पहुंचने की कार्य पद्धति विधि ये भी एक प्रयोजन भूत विषय है। ये दो विषय में अगर हमारी चूक हमारे मति दोष से हुई तो हम ग्रहित मिथ्यात्व में आ गए, चाहे हम मूल दिगंबर हो चाहे हम दिगंबर देव गुरु शास्त्र के मानने वाले हैं, फिर भी जैनाभाषी हो जाएंगे। तो ये जैनाभाषियों के लिए सातवां अधिकार लिखा गुरुदेव जी साहब ने, समोसरण में अन्य मत क्यों पैदा हुआ, मानी तो भगवान की थी कि अपना मति दोष के कारण से सुनते सुनते अन्यथा विकल्प हो गया कि भगवान ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ऐसा कहना चाहते नीचे पर वस्तु का स्वरूप में ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे अभिप्राय में दोष हुआ तो हम अन्य मत में उसी वक्त चले गए और जैन होते हुए भी जैनाभाषी हो गए। तो इसलिए ये सावधानी रखनी है। इसलिए हमने उस बात को उठाया था कि हीरों का जो व्यापार है उसमें जितनी सावधानी है इससे अधिक सावधानी इस मार्ग में चलने वाले की होती है। कहीं भी जरा से चूक हुई कि गए, प्रयोगभूत विषय में तो चलने वाला नए सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो श्रीमद जी थे ये कोई असाधारण ज्ञानी थे, हमारी उतनी पहुंच नहीं है, ये बात पहले हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि श्रीमद जी की जितनी पहुंच थी उन्होंने जो आज हम पढ़े थे, जैन मत के भी पढ़े थे और अन्य मत के भी पढ़े थे, हमारी तो उतनी पहुंच नहीं है कि अन्य मत के इतने भी पढ़ सके। 33 साल की उम्र में बड़े बड़े व्यापार और व्यवसाय करते करते उन्होंने जितने आज हम पढ़े अन्य मत में और जैन मत के, और उसमें उनकी जो पैनी दृष्टि थी और ज्ञान दशा के साथ भगवान आत्मा में विराजमान होकर के उसकी जो निर्मलता थी, हृदय जो हर प्रवचन में इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके वचनों का आधार लेते हैं, कोई मामूली बात नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है उसमें कोई गहराई है, वो बात को स्वीकार करके समझना पड़ेगा। हम मुमुक्षु में ज्ञानी के नीचे इसके चरण में बैठने लायक हैं, भूल से भी इनकी भूल देखने जाएंगे। एक ज्ञानी की अभक्ति में अनंत ज्ञानियों की, अनंत आचार्यों की, अनंत जनेंद्रों की अभक्ति हो जाएगी, ये बात होने वाली है। बहुत गंभीर विषय है, ऐसा नहीं चलेगा। तो उतनी जिम्मेवारी और जोखिम समझ करके ज्ञानी की बात का विचार करना है।
परिवर्तन किया तो परिवर्तन के बाद का ही उनकी बात सम्मानित होगी, परिवर्तन के पहले जन्म से भी जो भी प्रयोजन बोला था सब बात मान लो।
ऐसा है कि ज्ञानी होने के पहले ज्ञानी होने लायक कारणभूत भूमिका होती है। अगर हम कार्य का स्वीकार करें तो कारण का स्वीकार करना होगा। अगर हम कार्य का स्वीकार करते हैं और कारण का स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा कार्य का स्वीकार समुचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए इस भूमिका को हम समझे। हमारे यहाँ ज्ञान दशा की बहुत सी बातें चलती है, मुमुक्षु की यथार्थ कारणभूत भूमिका की इतनी बातें हमारे यहाँ नहीं चलती है। और वो विषय अगर हम उनको समझना है जो हमारी भूमिका का है, जिस कारण से हम ज्ञान दशा को भविष्य और ग्रह के ग्रहण का त्याग करो, 84 स्वग्रह का ग्रहण करो, 17 साल की उम्र के हैं, ये प्रवचन करते हुए गुरुदेव क्या बोलेंगे मालूम है? प्रवचन 19 भाग 1, ये 12 अंग का सार है ऐसा बोले हैं। तो 17 साल की उम्र में तो समझ भाषण नहीं हुआ था, 12 अंग का सार आया कहां से? अपने को लाइट होनी चाहिए अंदर में। तो गुरुदेव बोल रहे हैं, कोई हरे घर आदमी नहीं बोल रहा है। और किसके लिए बोल रहे हैं? कि श्रीमद राजचंद्र जी जैसे असाधारण व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। हमारे जैसे साधारण लोग नहीं है वो दोनों, हम उनके आगे कुछ नहीं है। हमारी जो पामरता है ये दोनों महात्मा का आगे हम लोग कुछ है ही नहीं, ये बात हमारे दिमाग में पहले रहनी चाहिए, जब तो हम उसकी बात समझने के लायक होंगे, वरना ये बात हम नहीं समझ पाएंगे।
हमारा दूसरा प्रश्न है कि खान जी स्वामी परिवर्तन के पहले जो उन्होंने प्रवचन की खान जी स्वामी, तो क्या वो प्रवचन भी अनुमानिक है क्या? खान जी स्वामी परिवर्तन के पहले जो प्रवचन किए हैं, तो क्या उनके वो वचन है वो भी आगम है क्या?
अब मान्य है, उनको तो मान्य है, उनको तो मान्य है, और वो भी खुद कहते थे सुनो कान खोलते हुए, अब कान खोलते सुनो, वो क्या कहते थे खुद कि ये बात हमको अंदर से पहले से आती थी और संप्रदाय में भी हम वही बात करते थे।
नहीं, लेकिन जब तक उन्होंने वो बात मतलब प्रकट नहीं हुई ना अंदर से, तो सभी के प्रत्येक आत्मा का स्वभाव अंदर
देखिए, वो ज्ञान दशा में रह करके बोलते थे वो बात, उस समय की बात नहीं है। ज्ञान दशा गुरुदेव को हुई, उसके बाद वो बोलते थे, वो बात उस वक्त बोलते थे। देखिए, अज्ञान दशा और अज्ञान दशा में वो अंतर है कि किसी जीव सम्यक सन्मुख होता है लेकिन सम्यक नहीं पाया, वो भी अज्ञान दशा है, और सम्यक विरुद्ध गया, वो भी अज्ञान दशा है। तो अज्ञान दशा में हम ऐसी मोटी मोटी बात करेंगे तत्व समझने वाले को, तो हमारी वो बात समझने की योग्यता नहीं रहेगी। बहुत सी बातें हैं उसमें, इसलिए हम इस बात को दोबारा कहते हैं, दोहराते हैं कि देखिए मोक्ष की भूमिका के विषय में आज भी हमारे समाज बहुत अनजान है, हमारे समाज के हमारे विद्वान लोग भी अनजान है। इस भूमिका में यथार्थता क्या चीज होती है और यथार्थता क्या चीज होती है, कि जो यथार्थता विधिगत होकर के सन्यास को प्राप्त करती है, व्हाट इज द कंटिन्यूएटिंग फैक्टर फॉर द ज्ञान दशा, ये बात हमको सोचनी पड़ेगी। हम अज्ञान दशा में रातों रात पलटा मार करके ज्ञान दशा में नहीं आ पाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसी चीज आएगी जो बढ़कर के ज्ञान दशा में परिवर्तित हो जाएगी, वो चीज कौन सी है ये मुमुक्ष भूमिका में समझने लायक है, उसका विषय नहीं किया जा सकता चाहे अज्ञान दशा में हो। वो बात गुरुदेव की नजर में आई थी, तब वो कहते थे कि देखो 17 साल की उम्र में श्रीमद में वो बात की जो 12 अंक का सार है, इस मुफ्त में बात नहीं आई थी। वो प्रामाणिक है, इसलिए तो पढ़ने के लिए अनुरोध करते हैं। नहीं, आगे जो पत्र हमने कल पढ़ाया, आप थे कि नहीं थे? 798 पढ़ाया था मैंने आपको, वो परस्पर विरोध तो नहीं लिखेंगे? नहीं, आप एक बात को परस्पर बहुत बहुवचन नहीं बनाए, आज तो पूछे की बात से मिलान करो, किसी की बात समझ नहीं हो तो आगे पीछे की बात समझनी पड़ेगी। ठीक
है,
भक्ति का प्रयोजन तो इसलिए करना पड़ेगा कि इसके वचन का स्वाध्याय करना है कि नहीं करना है, उसका निर्णय यहाँ से होगा। तो अगर श्रीमद जी ज्ञानी है तो उनके वचन प्रमाणिक है, तो परस्पर विरुद्ध बात करेंगे नहीं। तो नहीं, वो अब हमारी समझ फर्क है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो अर्थ घटन करते हैं वो बात भ्रम नहीं है।
मेरा ज्ञान लता के उन्हें ज्ञानी माना जाता, जन्म से ही जो भी उनके सेंटेंस है, जो भी शब्द है, वो ज्ञान के नहीं माने जाते। जब से वो परिवर्तित हुए हैं तब से तो उनके शब्द ज्ञानी ज्ञान लता के ज्ञान के माने जाते हैं।
तो बात ये हो जाएगी कि हम कारण का अस्वीकार करके कार्य को स्वीकार करना चाहते हैं।
अब हम आप दोनों बात करें, कि कार्य का कारण कितना लंबा होता है, जन्म से होता है या एक अंतर्मुख पहले हो जाता है, तत्काल का होता है कारण,
इसका कोई नियम नहीं है, समय का कोई नियम नहीं है,
कोई नियम नहीं है। अब मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ कि कांजी स्वामी के निमित्त से हम लोगों ने सीखा है कुछ, फिर हम वक्ता है, ये समय के सन्मुख हो सकते हैं, तो इनकी भी ज्ञानी ज्ञान की ही भूमिका है, क्योंकि जब ज्ञानी ये पहले ज्ञान की भूमिका मानी जाए तो कांजी स्वामी के निमित्त से जितने भी हजारों वक्ता हैं ये सब सम्यक के सम्मुख होने से ये भी ज्ञानी की भूमिका है, इनके कोई वचन अप्रमाणिक नहीं है, कोई वक्ता अप्रमाणिक नहीं है, एक शब्द बोलने वाला भी वक्ता अप्रमाणिक नहीं है, तो कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी ये छानबीन करना भी मिथ्या है, सब भूमिकाओं है,
वक्ताओं के विषय में आपका अभिप्राय सर्वमान्य नहीं हो सकता है, तो वो तो विषय विषयांतर हो गया। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम मुमुक्ष हैं, ज्ञान दशा हमें प्राप्त नहीं है, ज्ञानी के विषय में टिप्पणी करने का हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी हम करेंगे तो ये अनधिकृत चेष्टा हो जाएगी, ये अनधिकृत चेष्टा है। वो तो क्या कहते हैं कि वो कुछ समय के पाबंदी में वो बात की जाती है, उसमें कुछ समय के पाबंदी के बात करते
हैं।
वो चर्चा की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी वक्ता ज्ञानी तो है ही नहीं, है ज्ञानी है क्या, है कोई ज्ञानी में समय ज्ञानी है कोई वक्ता, गुरुदेव के जाने के बाद तो कोई है नहीं, तो मानो तो कोई है, मान लिया तो कोई है, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो भी सैकड़ों वक्ता है वो सभी ज्ञानी है वो तो हम नहीं कह सकते, वो मान्य भी नहीं कर सकते, फिर भी सबको बिठाया जाता है और सबकी बात सब सुनते हैं, तो अज्ञानी की बात सुनना कि नहीं सुनना ये सवाल पैदा हो जाएगा। तो बात वो है कि चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, बात यथार्थ हो तो सुननी चाहिए, बात अयथार्थ हो तो नहीं सुननी चाहिए, यथार्थता अयथार्थता का निर्णय सुनने वाले को करना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी सुनने वाले की रहेगी, और उसमें तो किसी का नहीं चलेगा, वो सब अपना अपना हित अरी समझ करके विवेक करें कि किसको सुनना किसको नहीं सुनना, वो सब अपना अपना निर्णय करें, बाकी सब एक प्रतिनिधि होते नहीं, सबके एक चेतना हो सकते नहीं और सब ज्ञानी भी हो सकते नहीं, और अज्ञानी हो गए इसलिए चौकड़ी लगा दो वो बात भी हो सकती नहीं, क्योंकि हमको ही सुनने का मौका अज्ञानी होता ही बनता है। आज ऐसे कौन वक्ता हमारा बोलता है कि मुझे अनुभूति है मैं ज्ञानी हूं मेरी बात सुनो, इस तरह से सब ये बोलते हैं कुछ एक को छोड़ करके कि देखो भाई हमको तो अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन गुरुदेव ऐसे कहते थे, तुरुमद जी ऐसे कहते हैं, श्रीमद जी ऐसे कहते हैं, कुंदकुंदाचार्य ऐसे कहते हैं, ऐसा महापुरुषों का नाम लेकर के उनकी बात का स्वाध्याय करते हैं हम लोग, लेकिन अभिप्राय तो स्वयं का आ ही जाता है, नाम हम किसी का लें, अभिप्राय तो स्वयं का आता है, विचार तो स्वयं का होता है कहने वाले का, वो कहां तक यथार्थ है कहां तक अयथार्थ है इसका निर्णय तो सुनने वाले को करना पड़ता है और उसकी जिम्मेवारी भी सुनने वाले पर रहती है। तो बात वो है कि हम उतना मर्यादा रखें कि ज्ञानी की टिप्पणी कभी नहीं करें, भूल से भी नहीं करें,
सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, वो आगम के आधार से अगर बोलेगा तो वो सत्य वक्ता है, आगम के आधार से नहीं कहता है तो वो सत्य वक्ता नहीं है भाई। कोई ना कोई निर्णय किए वो तो होगी ना, आधार तो बनाएगा। आगम के विरुद्ध अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो वो उसके लिए हम सत्य कैसे मानेंगे?
ठीक है, परिवर्तन तो परिवर्तन ऐसा है। परिणमन एक बात है, समझ के यथार्थता दूसरी बात है। दो अलग अलग गुणों के परिणमन होते हैं। तो यहाँ जो बात निकलती है वो तो ज्ञान के समझ के माध्यम से निकलती है, चाहे परिणमन उतना नहीं भी हो, समीर दर्शन होने के बाद भी निकलती है, दोनों वक्त निकलती है। तो परिणमन होना एक बात है, इसकी समझ आना इसके पहले वो दूसरी बात है। तो इसकी समझ यथार्थ आ गई तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, पर आपत्ति होती तो गुरुदेव प्रवचन क्यों करते हैं, हमारे वचन पर गुरुदेव क्यों प्रवचन नहीं करते हैं? आप इतना सोचिए, हमारी प्रशंसा गुरुदेव उतनी क्यों नहीं करते थे, हमारे वचन पर गुरुदेव प्रवचन क्यों नहीं करते थे, उनके वचन पर उन्होंने क्यों प्रवचन किया, उनकी इतनी क्यों प्रशंसा की? इतना विचार हमें होना चाहिए। नहीं, उसमें भी यथार्थता देखिए, आरोप पे योग्य पर आरोप आता है, ऐसे आरोप सभी पर नहीं आता है। आरोप पे योग्य भी होता है, आरोप पे अयोग्य भी बात होती है, दोनों अलग अलग बात होती है। ऐसे आरोप नहीं किया जाता, आप मानते हैं, ऐसी मोटी बात नहीं है उसमें। तो बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा, एकदम अलग विषय हो जाएगा। बनारसीदास जी ने नाटक समयसार की रचना अज्ञान दशा में की। अज्ञान दशा में की थी? नहीं, बनारसी दास जी ने, ये आपका प्रचार है ना, ऐसा तो नहीं लगता है बंदे, आप जैसे कहते हैं सब लगता नहीं है। और इनकी जो आत्मकथा है वो आत्मकथा में वो बात नहीं दिखती है कि वो ज्ञान दशा में उसने रचना की, वो बात नहीं दिखती। आप पढ़ लीजिए, अर्ध कथा में करके उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, वो आप पढ़ लीजिए। नाटक समय सार की रचना ज्ञान दशा में नहीं लिखी है, ज्ञान दशा में आकर देखी है। ज्ञान दशा में आने पर मेरे ज्ञान हुआ कि यह रचना सत्य हुई है। उसका भगवान है, ठीक है। आपका बात सुन लिया, अब मेरा स्पष्टीकरण आप सुनिए।
भगवान उत्तम बात है वो तो वास्तव में बहुत ही श्लाघ्य और वित्त वंदनीय है, लेकिन जो अपने मूल बातों को जिला नहीं खाती उनको ऐसा मानकर की अज्ञान बताते
अच्छा। अब 218 नंबर का जो पत्र है वो ज्ञान दशा में तो लिखा नहीं है, वो तो ज्ञान दशा में लिखा हुआ है, वो अपनी समझ की गलती है, अपनी समझ की गलती है। ये श्रीमद् जी का वचन ऐसे आओ पंडित जी हो उर्दू हो, इसके वचन समझने के लिए बहुत योग्यता चाहिए। श्री कृष्ण महात्मा थे और ज्ञानी होते हुए भी उदय भाव से संसार में रहते थे, तो हमारा आगे भी बोलता है तो ज्ञानी थे। श्री कृष्ण ज्ञानी थे वो तो हमारा आगम भी बोलता है, हरिवंश पुराण जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। ये तो हमारे सैनिक महाराजा भी गए,
जब उन्होंने नारायण पद का बंद किया था तब तो ज्ञानी अवस्था में ही होता है, उसके बाद उनके अवसर सम्यक्त था जो जीवन में तो वो छूट गया था, तब वो नरक और पर्याय छूट गया था।
इसलिए वो ज्ञानी नहीं थे वो हम नहीं कह सकते, वो क्षायिक समय दृष्टि थे। श्रेणिक महाराजा क्षायिक समय दृष्टि थे, सूक्ष्म के लिए आप शंका कर सकते हो तो उसको च्युत हो गया होगा, लेकिन श्रेणी महाराजा जो आदिनाथ है हमारे आने वाले चौबीस के वो आज भी लड़क में है और श्री कृष्ण भी है।
लक्ष्मण के लिए और कृष्ण के लिए जो
उसका आधार मिले तो आप हमको बताना कि कब छूटा कब था, कब छूटा कब नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा वो अधिकार नहीं है कि हम किसी भी सम्यक दृष्टि को कभी भी मिथ्या दृष्टि ठहरा दे, क्योंकि वो सूक्ष्म सम्यक दृष्टि है। इसलिए उस वक्त होगा तो, और वो उस वक्त की बात कर रहे हैं वो तो नहीं है, तो उस वक्त की बात कर रहे हैं वो बात तो नहीं है, जब वो ज्ञानी थे उस वक्त वो बात कर रहे हैं, समझा। इतना जैन शास्त्र में भी इसे भी जाना जा सकता है, क्या श्री कृष्ण के विषय में जिनागम से भी ये बात जानी जा सकती है कि वो ज्ञानी थे। आपने जिनागम पढ़ा होगा, श्रीमद जी ने भी पढ़ा है, लेकिन आपने कुछ और निकाला है, उन्होंने कुछ और निकाला है। ठीक है ठीक है, आपको कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि ये श्रीमद जी जिनागम की बात बोल रहे हैं तो मेरे से कुछ ज्यादा समझे होंगे, उतना आपको स्वीकार करना चाहिए आत्मार्थ के लिए। तो ये ज्ञानी थे, ज्ञान दशा में आकर के जिनागम का आधार लेकर के लिख रहे हैं, फिर हमारी बुद्धि ज्यादा चलाने की कोई जरूरत नहीं है, है? है? बस बात तो खत्म हो गई। इतना जैन शास्त्र से भी जाना जा सकता है और यह यथार्थ है, तथापि उनकी गति के विषय में जो भेद बताया है नरक गति में गए उसका भिन्न कारण है, तो भिन्न कारण है वो भी उनके ज्ञान में है, वो नहीं जानते थे और हम जानते हैं, तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। और भागवता जी ने तो जीव श्री कृष्ण का वर्णन किया है वे तो परमात्मा ही है। अब ये बात समझने में आपको कठिनाई होगी, क्यों? कि वहां बात दूसरे ढंग से चली है, वहां जो महात्मा का परमात्मा के नाम से एक कथन योग चला है, उसमें अध्यात्म का उसका अर्थ घटन अलग होता है और कथानी योग से इसका अर्थघटन अलग होता है। तो और नजर उनकी श्रीमद जी की थी कि जब कोई मुमुक्षु को ज्ञानी से पारमार्थिक लाभ मिलता है तो उनको वो चतुर्थ गुण स्थान वाला नजर नहीं आता, वो उनको परमात्मा के रूप में देखते हैं, ऐसा बनता है। और वो बात उन्होंने 223 नंबर के पत्र में की है। 223 नंबर का पत्र का एक अंश मैं आपको पढ़ाऊं। अभी एक एक बात चलने दो, बीच में दूसरे दूसरे बात में नहीं उलझे आप। ज्ञानी पुरुष के सर्व चारित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से, ज्ञानी पुरुष के सर्व चरित्र में एक भाव का लक्ष्य होने से उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का एक भाव होता है। क्या कहना चाहते हो कि ज्ञानी की अंतर परिणति निज परमात्म तत्व के सदृश हुई, उस परिणति को पहचानने वाला कोई ज्ञानी का पहचान वाला कह सकते हैं। गुरुदेव कहते थे कि ये हजारों लोग इकट्ठे होते हैं इसलिए पहचानते हैं, सो बात नहीं है, पहचानना अलग बात होती है, और वो कुछ एक पहचान सकते हैं। ये तो पुण्य लेकर आए हैं इसलिए सब ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी पहचानते नहीं है, ऐसा कहते थे। तो उन परिणति के दौरान इनके परिणति के विषयभूत इनके हृदय में विराजमान जो परम तत्व है उसका दर्शन मुमुक्षु को होता है। उसका दर्शन किसको होता है? मुमुक्षु को होता है। जब मुमुक्षु को उसका दर्शन होता है तो उनको लगता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, ज्ञानी का दर्शन नहीं हुआ, चतुर्थ स्थान वाले का नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ। तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा का ऐक्य भाव होता है, और यही परा भक्ति है। ज्ञानी पुरुष और परमात्मा में अंतर नहीं है, और जो कोई अंतर मानता है उसे मार्ग की प्राप्ति परम विकट है। ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहचान के बिना परमात्मा की निज परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं मिली है। इसलिए सर्वथा भक्ति करने योग्य, कितना सर्वथा भक्ति करने योग्य, आप अर्घ चढ़ाने की वो चढ़ाने की सब बात इधर चलती है, सर्वथा भक्ति करने योग्य ऐसी दिलधारी दिव्य मूर्ति ज्ञानी रूप परमात्मा की, इसका नमस्कार आदि भक्ति से लेकर पराभक्ति के अंत तक एक लय से आराधन करना, ऐसा शास्त्र का लक्ष्य है। हम लोग क्या शास्त्र पढ़ते हैं? शास्त्र तो उन्होंने पढ़ा है, ऐसा शास्त्र लक्ष्य है, ऐसा जानते हैं वो तो शास्त्र में क्या लिखा है। परमात्मा इस देहधारी रूप से उत्पन्न हुआ है मेरे लिए, ऐसी ही ज्ञानी पुरुष के प्रति जीव को बुद्धि होने पर भक्ति उदित होती है, सच्ची भक्ति उदित होती है, और यह भक्ति क्रमशः पराभक्ति रूप होती जाती है। इस विषय में श्रीमद् भागवत में भगवद गीता में बहुत से भेद प्रकाशित करके इसी लक्ष्य की प्रशंसा की है, जो मूलजरागम की चीज है, तो उन्होंने अपने शास्त्र में ली वो बात। मूल बात तो वो जिनागम के जो इनकी नजर में आई थी। अभी क्या कहना, ज्ञानी तीर्थंकर देव में लक्ष्य होने के लिए जैन धर्म में भी पंच परमेष्टि मंत्र में नमो लिंकां पद के बाद सिद्ध को नमस्कार किया है। इसका रहस्य क्या है वो उन्होंने खोल दिया। तो इसका रहस्य क्या है नमस्कार मंत्र में? ऊपर वाले को पीछे रखा, नीचे वाले को आगे रखने का मतलब क्या होता है? इसमें भी एक रहस्य है। यही रहस्य है कि यही भक्ति के लिए यह सूचित करता है कि पहले ज्ञानी पुरुष की भक्ति और यही परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति का निदान है। दूसरे ढंग से चलने से कभी निज परमात्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं है, वो बात उन्होंने लिखा है। तो वो तो बहुत बहुत गहन ज्ञान का विषय है। नहीं 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 आया, परस्पर विरोध नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञानी थे, समयसार हम पढ़ते हैं, उन्होंने उनको तो समयसार पढ़ के अनुभूति हुई थी। भाई साहब हमको अगर समयसार पढ़ के अनुभूति नहीं हुई है,
हाँ
तो उनको तो समय सार वो जो समझे हैं वो हम नहीं समझे हैं। ये बात हमको पहले स्वीकार करनी पड़ेगी कि श्रीमद जी जो समय सार को समझे हैं वो समय सार को अभी तक हम नहीं समझ पाए, इसलिए समय सार से गुरु जो बात करते हैं वो हमारी ना समझ है, तो हमारी समझ नहीं है, हमारी ना समझ है।
हाँ ग्रंथों के लिए राग वर्धक और वर्जित किया,
हाँ हाँ,
और यहाँ समर्थन है
नहीं, समर्थन नहीं है, वो हमारी नासमझ है, ये हमारी नासमझ है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हाँ वो सब हमारा पढ़ा हुआ है, आपने आपने जितने भी दफे पढ़ा है इससे भी ज्यादा वक्त हमने पढ़ा है। वो तो हो सकता है, वो बात वो है कि ज्ञानी की कोई बात काटने का पहले हमको अधिकार है कि नहीं है, पहले तो ये बात को फाइनल करो कि ज्ञानी के किसी बात को काटने का, झूठे कहने का, खोटे कहने का, विरुद्ध कहने का अधिकार हम कहां से लेकर के आए? कौन सी हैसियत है हमारी? दो चार शास्त्र पढ़ लिए और विद्वान माने गए इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं क्या?
ये
अनिर्देशकर चेष्टा है।
लेकिन जब से ज्ञानी हुआ, अज्ञान अवस्था की बात है,
अज्ञान अवस्था को भी देखिए, अज्ञान अवस्था को, इनकी अज्ञान अवस्था को समझने के लिए भी बहुत बहुत योग्यता चाहिएगी। ये मामूली चीज नहीं है, जिस पर गुरुदेव ने प्रवचन किए हैं और गुरुदेव ने उस पर सिक्का लगाया है। सिलेक्टेड मैंने उनकी भावना के जो प्रवचन थे, समय सार के, नियम सार के, बड़े बड़े आदमी के, उसमें से सिलेक्टेड प्रवचन में ये 10 वचन उन्होंने लिया है। तो ये मेरी भावना का विषय है और ये 12 अंक का सार है, तो हमको लाइट होनी चाहिए कि उसमें कोई बहुत गहनता है, हमारी छिछरी बुद्धि का काम उसमें नहीं है। ये बात हमको पहले स्वीकार करनी पड़ेगी, तब बात समझ में आएगी। हम समझते हैं, उसमें ये बात समझ में कभी नहीं आएगी। हम भी समझते हैं, वो बात समझने के लिए बहुत देर लगेगी। ये श्रीमद जी की बात उतनी छिछरी नहीं है, उतनी आसान भी नहीं है। अभी समय हो चुका है,
तो
ज्ञान पर